नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यरंता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री श्री टोब्गे ने आज थिम्पू में ग्यासियन जक्सन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज 3 दिन की यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कदाचार में लिप्त होने के कारण 20 विद्यालयों की मान्यता रद्द की है। काठमांडू में भारतीय दूतावास से कल 59वां भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC दिवस मनाया। रूस में कल रात राजधानी मॉस्को के पास एक कंसर्ट हॉल के अंदर बंदूकधारियों की गोलाबारी में 7 से अधिक लोग मारे गए। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की किदांबी श्रीकांत सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री श्री टोब्गे ने आज थिम्पू में भारत की सहायता से बनाए गए ग्यासियन जक्सन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। भारत के सहयोग से बनाया गया 150 बिस्तरों वाला यह अस्पताल 2 चरणों में बना है। पहले चरण के निर्माण कार्य पर 22 करोड़ रुपए की लागत आई है और यह वर्ष 2019 से कार्य कर रहा है। 2019 में दूसरे चरण का निर्माण कार्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के हिस्से के रूप में किया गया और इस पर 119 करोड़ रुपए की लागत आई। भूटान ने नवनिर्मित अस्पताल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करेगा। अस्पताल में बाल रोग, स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान, एनेस्थेसियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर, नवजात और बाल गहन देखभाल की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अस्पताल स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत भूटान साझेदारी का ज्वलंत उदाहरण है। उद्घाटन के पश्चात प्रधानमंत्री श्री मोदी नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। भूटान नरेश ने केसर नमग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री टोब्गे ने उन्हें हवाई अड्डे पर भावभीनी विदाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी भूटान यात्रा विशेष रही है और उन्हें भूटान के राजा, प्रधानमंत्री टोब्गे और अन्य प्रतिष्ठित लोगों से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने ये भी कहा कि इस बातचीत से दोनों देशों के मैत्री संबंध और भी सुदृढ़ होंगे। श्री मोदी ने ऑर्डर ऑफ द ट्रुक ग्यालपो से सम्मानित किए जाने पर भूटान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने उत्साह और आतिथ्य के लिए भूटान के लोगों को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने कहा कि भूटान के लिए भारत हमेशा एक विश्वसनीय मित्र और साझेदार रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज जिला न्यायपालिका प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ये जनता के सामने न्यायिक प्रणाली का सच्चा प्रतिनिधि करती है। अगरतला में त्रिपुरा न्यायिक अकादमी के 10वें न्यायिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिला अदालत स्तर पर न्यायपालिका प्रणाली को मजबूत बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग उच्च न्यायालय में आने का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं और बहुत कम लोग हैं जो सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने कहा कि यह न्यायिक प्रणाली ही है जो संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान प्रदान करती है और समाज में सामाजिक सद्भाव बहाल करती है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि आपराधिक प्रशासन व्यवस्था में सिर्फ आरोपियों पर ही नजर नहीं रखनी चाहिए बल्कि पीड़ितों पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के अधिकार, उनकी भागीदारी और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगामी लोकसभा चुनाव में 18 से 19 वर्ष की आयु के लगभग 1,80,00,000 युवा पहली बार मतदान करेंगे। पहली बार मत देने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आई वोट फॉर श्योर जैसे कई सोशल मीडिया अभियान चलाए जा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज 3 दिन की यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने INA स्मारक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि स्मारक INA की देशभक्ति और अदम्य साहस की भावना का प्रतीक है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कदाचार में लिप्त होने के कारण 20 विद्यालयों की मान्यता रद्द की है। इनमें दिल्ली के 5 विद्यालय भी शामिल हैं। CBSE की एक अधिसूचना में कहा गया है कि बोर्ड के औचक निरीक्षण में परीक्षा नियमों की अनदेखी की गई और कई विसंगतियां पाई गई। CBSE ने यह भी कहा कि स्कूल डमी छात्रों और अयोग्य उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल करने जैसे विभिन्न कदाचार कर रहे थे और रिकॉर्ड ठीक से नहीं रख रहे थे। पंजाब में संगरूर जिले के कई गांव में जहरीली शराब पीने से मृतकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। पुलिस की विशेष टीम इस मामले की जांच कर रही है और अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने कल 59वां भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ICEC दिवस मनाया। इस समारोह में लगभग 300 गणमान्य अतिथि उपस्थित थे, जिनमें कई संसद सदस्य, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और ICEC के पूर्व छात्र शामिल थे। इस अवसर पर नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने कहा कि दूसरे देशों के साथ भारत की साझेदारी वसुदेव कुटुम्बकम और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारतीय राजदूत ने कहा कि नेपाल में सभी पक्षों के हित के आधार पर ICEC के तहत प्रशासकों, रेलवे अधिकारियों, किसानों और संसदीय अधिकारियों के लिए बेहतर पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। रूस में कल रात राजधानी मॉस्को के पास एक कंसर्ट हॉल के अंदर बंदूकधारियों की गोलाबारी में 7 से अधिक लोग मारे गए और 145 से अधिक घायल हो गए। आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट ने ISIS संबद्ध समाचार एजेंसी के एक संक्षिप्त बयान में हमले की जिम्मेदारी ली है, हालांकि गुट ने दावे के समर्थन में सबूत नहीं दिए। गोलीबारी के बाद कंसर्ट हॉल में भीषण आग लग गई और रूसी विशेष बलों को घटनास्थल पर तैनात किया गया है। हमले के बाद एक स्वास्थ्य टीम को क्षेत्र में बुलाया गया और 70 से अधिक एम्बुलेंस टीमें और डॉक्टर पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं। क्षेत्रीय गवर्नर एंड्रे वोरोब्योव ने कहा कि लोगों को बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किदांबी श्रीकांत सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कल स्विट्जरलैंड के बैसल में उन्होंने पुरुष सिंगल के क्वार्टर फाइनल में ली चियाहाओ को 21-10, 21-14 से हराया। आज सेमीफाइनल में उनका मुकाबला ली चुनी से होगा। पुरुष सिंगल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल मैच में प्रियांशु राजावत को टीएन चेंग चाओ से 15-21, 19-21 से हार का सामना करना पड़ा। किरण जॉर्ज भी डेनमार्क के रास्मस गेंगे से हार गए। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट के पहले मुकाबले में कल रात चेन्नई में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 गेंद बाकी रहते 174 रन लक्ष्य का हासिल किया। चेन्नई सुपर किंग्स के रचिन रविंद्र ने 15 गेंदों में 37 रन बनाए। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 173 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अनुज रावत ने सबसे ज्यादा 25 गेंद पर 48 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने 29 रन देकर 4 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम सनराइजर हैदराबाद से भिड़ेगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने प्रश्न पूछने के बदले धनराशि लेने के मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा के कोलकाता सहित कई स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है। सूत्रों ने बताया है कि छापेमारी कोलकाता में मोइत्रा के परिसरों और अन्य शहरों में की जा रही है। CBI ने लोकपाल के निर्देश पर पूर्व सांसद मोइत्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। लोकपाल ने CBI से इस मामले में 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देने को कहा था। महुआ मोइत्रा को संसद की आचार समिति की सिफारिश के बाद पिछले वर्ष दिसंबर में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। संसद में प्रश्न पूछने के बदले एक व्यापारी से रिश्वत लेने के आरोप लगाए जाने के बाद समिति ने मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश की थी। केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कदाचार में लिप्त होने के कारण 20 विद्यालयों की मान्यता रद्द की है। इनमें दिल्ली के 5 विद्यालय भी शामिल हैं। CBSE की एक अधिसूचना में कहा गया है कि बोर्ड के औचक निरीक्षण में परीक्षा नियमों की अनदेखी की गई और कई विसंगतियां पाई गई। CBSE ने यह भी कहा कि ये स्कूल डमी छात्रों और अयोग्य उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल करने जैसे विभिन्न कदाचार कर रहे थे और रिकॉर्ड ठीक से नहीं रख रहे थे। एक बार फिर से मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री श्री टोबगे ने आज थिम्पू में जगस्वेन जत्सन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज 3 दिन की यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कदाचार में लिप्त होने के कारण 20 विद्यालयों की मान्यता रद्द की है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने कल 59वां भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ICEC दिवस मनाया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।